मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 7 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, और सूचनाएं ये है कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल यानी कि शनिवार को आपको जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो एज इट इज ही मिलेंगी, और साथ ही आप सबको एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए होता है। फ्रेंड, जहां तक आज के मुख्य विषय का सवाल है उसके तहत मैं CAG पर बात करूंगा, लेकिन बहुत थोड़ी सी ही बात कर पाऊंगा क्योंकि दूसरी घटनाएं आज इतनी ज्यादा हैं सिविल सर्विस से रिलेटेड कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा हम लोग उस पर बात न कर पाए, लेकिन फिर भी CAG पर मैं जो बात करने जा रहा हूं उसका जो मुख्य तथ्य होगा उसकी ओर मैं जरूर आपको संकेतित करूंगा। न्यूज में आपने सुना और पढ़ा भी कि जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक जो थे उपराज्यपाल मुर्मू साहब, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, और त्यागपत्र देने के बाद उन्हें तुरंत ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया गया है, ठीक है। और मनोज सिन्हा जो हमारे पूरी इससे पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है शायद हमारे संचार के और रेलवे राज्य मंत्री रहे हैं मनोज सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया है। इनफैक्ट जो CAG के आज के विषय का जो मैंने चुनाव किया है वो इसी नई नियुक्ति को लेकर के ही इसी के संदर्भ में किया है, उस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आपने एक न्यूज सुनी होगी, वो है किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन, आज से चल रही किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। अब आप देखिए कि एक बहुत ही छोटी सी घटना, ठीक है भैया एक ट्रेन चल गई, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई कि जब भी आप कृषि के बारे में कुछ लिखेंगे कि कृषि के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है, क्या उसके प्रभाव होंगे, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कैसे सप्लाई चेन के बारे में अलग से कोशिशें हो रही हैं, तो डेफिनेटली फिर ये एक जो तथ्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करेगा, क्योंकि इन्हीं बातों से जो एग्जामिनर है वो अनुमान लगा पाता है कि नहीं नहीं आप एक बहुत ही सतर्क कैंडिडेट हैं, लगातार अपने समय से जुड़े होते हैं, और जो घटनाएं होती हैं उन्हें बहुत बारीकी से देखते भी हैं और उनका उपयोग करना भी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको अगर ध्यान हो, मैंने इस बात की चर्चा की थी अपने खासकर बजट वाले विषय में कि सरकार ने ये घोषणा की है कि वो कृषि उत्पादों के लिए, लेकिन किस किस कृषि उत्पादों के लिए, वे जो पेरिशेबल हैं यानी कि बहुत जल्दी जो नष्ट हो जाते हैं, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फूल हैं, फ्लावर्स हैं, दूध हैं, मांस है, मछलियां हैं, तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं, तो इनके लिए वो स्पेशल ट्रेन चलाएगी और उसी संदर्भ में इस ट्रेन की शुरुआत आज हुई है। ये ट्रेन महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी, और महाराष्ट्र में एक जगह है देवलाली जो नासिक के पास में, वहां से ये ट्रेन चलेगी, और नासिक से इसको इसलिए चलाया गया है, आप लोगों को महाराष्ट्र के लोग तो खैर बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ ही होंगे कि जो नासिक है वो वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है, और वहां से इन वस्तुओं का जो उत्पादन होकर के और उत्तर भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में भेजा जाता है, तो ये ट्रेन इस कमी को पूरा करेगी। अब आप देखिए कि इसी के साथ एक और भी बात है, सरकार ने एक और भी घोषणा की थी कि वो खासकर कोल्ड चेन तैयार करेगी। कोल्ड चेन का मतलब है कि आवागमन के ऐसे साधन जिसमें ठंडक बनी रहे, क्योंकि अब इन चीजों के लिए तो ठंड की जरूरत है ताकि ये नष्ट ना हो, तो उसके लिए सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो हमारे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनमें कुछ ऐसे रेफ्रिजरेटर वाले डब्बे लगा दिए जाएंगे तो उनमें भी चीजें जाती रहेंगी, उसी के तहत आप एक कह लीजिए कि ये प्योरली इस तरह के कोल्ड चेन वाली ट्रेन चलाई गई है, तो आपके दिमाग में ये शब्द भी होना चाहिए कोल्ड चेन, तो अब इस तरह के कोच भी बनाए जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट घटना है। मित्रों, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी, जो सुरक्षा हमारा जो UNO है, UNO की जो सुरक्षा परिषद है, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन तो उसका साथ दे ही रहा है, और आप जानते हैं कि चीन तो उसका परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उनको लग रहा था कि कश्मीर का मुद्दा वहां उठेगा, लेकिन कश्मीर का मुद्दा वहां नहीं उठा। उठाने की कोशिश भी की गई तो वहां के सभी सदस्यों ने, ज्यादातर सदस्यों ने यही कहा कि नहीं नहीं, ये मामला भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उस तरह की जो बैठक होती है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ये बात आपको इसलिए जानना जरूरी है कि यहां फिर से एक बार पाकिस्तान को निराशा का मुंह देखना पड़ा है, और साथ ही भारत को जो विश्व स्तर पर समर्थन मिल रहा है वो एक बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस बीच में एक दो और छुटपुट घटनाएं आपको पढ़ने को मिली होंगी जिनकी चर्चा मैंने स्पेशली नहीं की थी। जैसे पाकिस्तान ने अब एक नक्शा जारी किया है, मजेदार बात है कि उस नक्शे में शुरू से लद्दाख वद्दाख के क्षेत्रों को तो लेकर के चलते ही था, अब वो जम्मू कश्मीर के सियाचिन से लेकर के जूनागढ़ तक को अपने पाकिस्तान में दिखा रहा है, जूनागढ़ तक को। बताइए अब इसको आप क्या कहेंगे। यहां तक कि अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ है राम मंदिर का, उसको लेकर के उसने आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति इस मायने में कि भारत ये क्या कर रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपनी तरफ तो वो देख ही नहीं रहा है कि वो क्या करता है अपने यहां अल्पसंख्यकों के लिए। तो भारत ने इन दोनों मामलों में अपनी बहुत ही गहरी चिंता और प्रतिरोध व्यक्त किया है कि आंतरिक मामलों में इस तरह से हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि भारत और पाकिस्तान यूके और भारत और चाइना पड़ोसी देश होने के नाते सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़ा सा ज्यादा मायने रखते हैं, तो जब भी बीच बीच में ये छोटी सी घटनाएं हों, आपको कोई बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, दोहराते रहिए ताकि दिमाग से वो निकल ना जाए, और अगर कभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगर आप लेटेस्ट चीजों का उल्लेख करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा मार्क्स बटोरने वाले होंगे। दोस्तों एक खबर ये भी अखबारों में आपने पढ़ी होगी कि सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने ये स्वीकार किया है कि जो चीन है वो भारतीय हिस्से में 5 मई को जो है ना वो इलाके में घुस गया है, और वहां आने के बाद वो वहीं पर रुक गया है। इसको लेकर के स्थिति जो है थोड़ी सी संवेदनशील हो गई है, और हो सकता है कि गतिरोध लंबा चले। हालांकि बातचीत लगातार हो रही है स्थितियों को सुलझाने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आपने देखा होगा कि अखबारों में भी ये बातें आती थी, न्यूज़ में भी आता था, कुछ लोग कहते थे कि वो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुकी है चीन की जो सेना है, लेकिन हम सब बहुत इसके बारे में क्लियर नहीं थे कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये है कि वो भारतीय इलाके में कुछ दूरी तक आ चुकी है, बस केवल ये तथ्य आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रखे। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से लेबनान के बैरूत में जो अमोनिया नाइट्रेट है उसका विस्फोट हुआ। अमोनिया नाइट्रेट के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी इसी तरह से लिंक लेता है, जैसे ये केमिकल कंपाउंड है, आप कह लीजिए कि एक यौगिक है, इसका जो सूत्र है, जो फार्मूला है, रासायनिक फार्मूला जिसे हम कहते हैं, वह है NH4NO3, इसका फार्मूला है। बहुत ज्यादा हाईली ये कह लीजिए कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, इसीलिए इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो उर्वरक बनाने के लिए होता है, खाद बनाने के लिए होता है, जिसे हम आप कह लीजिए कि रासायनिक खाद कहते हैं, और पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। मैंने आपको बहुत थोड़ी सी जानकारी दी है, बेहतर होगा कि आप इसके बारे में थोड़ी सी और भी बातें देख लें। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ 2-3 बहुत महत्वपूर्ण क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। एक दैनिक भास्कर की क्लिपिंग्स, संस्थाएं आलोचना पर उदार भाव रखें, खासकर जो न्यायालय अपने अवमानना को लेकर के उसने जो 1-2 कदम उठाए हैं उस पर एक एडिटोरियल टिप्पणी है, और मुझे लगता है कि इसमें 1-2 रेफरेंसेस बहुत खूबसूरत हैं, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा यह कि स्टॉक एक्सचेंज फॉर सोशल इंटरप्राइजेस, ये एक चूंकि नई बात है कि जो हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसके बारे में हम लोगों ने कभी बात नहीं की है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, तो इसमें आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछ ली जाती है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दैनिक जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, उसका एक लेख है कि जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उस न्यूक्लियर एनर्जी की हमारी क्या स्थिति है, उसको लेकर के एक आर्टिकल है। मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी की स्थिति है अभी तक की और आगे हम क्या करने जा रहे हैं उसकी काफ़ी जानकारी इसमें मिल जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप कुछ अपने नोट्स तैयार कर लें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और जो मुख्य विषय है मैंने बताया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर कल आपने दूरदर्शन की न्यूज सुनी हो, नहीं दूरदर्शन की न्यूज़ नहीं सारी, रवीश जी के प्रोग्राम में वो NDTV में आ रहा था 9 बजे के जब आता है, तो उसमें रवीश ने एक तो प्रश्न उठाए थे जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न उन्होंने जो उठाया वो ये है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अब आपको मालूम होगा, इतनी तो बेसिक जानकारी आप रख ही रहे होंगे अगर आप थोड़ी सी तैयारी लंबे समय से कर रहे हों, कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है बेसिकली अनुच्छेद 148 के तहत, संविधान के तहत इसको, इसकी व्यवस्था कि अंग्रेजों के समय से ये संस्था है और इसे बहुत ज़्यादा आप यूं कह लीजिए कि सुरक्षा भी दी गई है कि आप इन्हें बीच, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इसे आप बीच में हटा नहीं सकते ताकि अपना काम बहुत ही स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के कर सके। तो रवीश ने एक बात बताई थी कि जब विनोद राय जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, विनोद राय जिनका नाम इसमें बहुत ही फेमस है, वो एक आईएएस ऑफिसर ही थे, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है बातचीत करने का, खासकर 2G स्पेक्ट्रम वगैरह के मामले को वही लेकर के आए थे। उस समय जो CAG है 212 रिपोर्ट उसने दी थी, 212 रिपोर्ट एक साल में, और अभी जो रिपोर्ट की संख्या घटकर है 72 है। इतना कम क्यों हो गया, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, क्योंकि देखिए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका काम क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है कि सरकार को पैसा पब्लिक देती है, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, पब्लिक से आता है, और इसके बाद सरकार उसे खर्च करती है। तो सीधी सी बात है कि CAG उसकी ऑडिट करके ये देखती है कि भाई जो सरकार ने पैसा खर्च किया है वो सही तरीके से खर्च किया है या नहीं किया है, प्रोसीजर सही तरीके से अपनाया गया कि नहीं, क्योंकि पब्लिक फंड है, ये पब्लिक का पैसा है। तो एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि वो निगरानी करती है, एक्सपेंडिचर पर एक नियंत्रण रखती है। तो अगर संख्या कम होती जा रही है तो सीधी सी बात है कि ये क्यों कम हो रहा है भाई, क्या सरकार का कोई इस पर दबाव है और क्या है। इसके बाद उसी में जो हमारे कपिल सिब्बल जी हैं उनका एक इंटरव्यू दिखाया गया, उस इंटरव्यू में उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया वो ये कि जो CAG की नियुक्ति होती है, जैसे अभी मुर्मू जी की नियुक्ति हुई है तो सीधे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, संवैधानिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से स्वाभाविक है कि कैबिनेट करती है, प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं या बताते हैं तब हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उसे सरकार के की निगरानी करती है खर्च के, तो उसकी नियुक्ति भी सरकार क्यों करे, जैसे दूसरों के बहुत से ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति सरकार नहीं करती है, जैसे विजिलेंस कमिश्नर, उसकी नियुक्ति एक कमेटी करती है, आपको मालूम है कमेटी बनाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के भी जो नेता होंगे वो होंगे, इस तरह से कमेटी फिर उनके बारे में निर्णय लेती है। ऐसे और भी कुछ पद हैं जिनको, जिनकी नियुक्ति कमेटी के द्वारा की जाती है। तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि अगर CAG की तटस्थता को बनाए रखनी है तो उनकी भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा न हो करके बल्कि इस तरह की एक समिति के द्वारा होना चाहिए, तो इस पर आप लोग मित्रों थोड़ा विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अंकित राज मुंबई से, रोहित राज न्यू दिल्ली से, रूपेश नारवड़े और विजय कुमार लहरदगा से, आप सबका बहुत बहुत आभार। रूपेश, आपने बहुत अच्छी समीक्षा ऑनलाइन कोर्सेस के बारे में लिख करके भेजी है, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत बारीकी के साथ आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, बस अपने इस बारीकीपन को लगातार और ज़्यादा धार देते रहे। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, आप सब अपना ध्यान रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, धन्यवाद।